मूल्यवान बनाया जाए, ये प्रक्रिया आप सभी सीखी है। निश्चित ही हमारे जीवन को हम ही अच्छा बना सकते हैं और हम ही बुरा बना लेते हैं। एक बार की बात है, बिहार चल रहा है। हाँ, कुछ पीछे वाले बच्चे आगे आ जाओ जगह। हाँ, जल्दी आओ भैया, सब लोग एक हरियर इधर से तीन लाइन लगा लो। बहुत सारे जगह
ये दोनों हरे घोटे वाले थे, उसके पीछे वाले सब उठ के आ जाओ। हरे वाले तुम भी आ जाओ, थोड़ा हरा हरा यहाँ रहेंगे। ठीक है, आ जाओ, बहुत अच्छा
है। चलो फटाफट दो लाइन लगा लो, एक इधर से ले लो, आगे ले लो, जल्दी से आगे बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, कोई अवसर करें बात क्या है। संगत में बच्चे पीछे क्यों बैठ रहे हैं?
और ये बीच वाली लाइन देखा, उस लाइन में बीच तुम्हारे बात लागे जो बैठा ना,
जो बच्चा
नहीं करता तुम्हारे
बैग रखे हैं, लेकिन कहीं चले गए। बिहार चल रहा था, कोई जगह गीत बज रहा था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। आचार्य जी साथ में चल रहे थे, आचार्य जी कहने लगे भजन ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया बसाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बसाई। दुनिया बनाने वाले तो दुनिया बनाई है, किंतु हमने अपनी दुनिया स्वयं बसाई है कि किसी दूसरे ने बसाया? हम स्वयं उलझते हैं, कोई हमें उलझाता। आप देखना, हमारे जीवन में जितनी भी उलझने हैं, बहुत सारी उलझन तो स्वयं हमारे द्वारा पैदा की हुई हैं। जैसे कल किसी एक बच्चे ने पूछा था, यदि कोई हमें पिग कहे तो हम क्या करें? डोंट माइंड, जाना माइंड में नहीं लेना। जैसे एक दिन हमने बताया था, मोबाइल में आप लोग जानते तो हैं, मोबाइल में कितने सारे वीडियो ऑडियो आ जाए, लेकिन जब तक आप डाउनलोड नहीं करो तब तक वो आपके काम की चीज है क्या? बहुत सारे पिक्चर्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है, यदि कोई हजार लोग उसमें हजार वीडियो सेंड कर रहे हैं आपके मोबाइल में, किंतु यदि आप उसको डाउनलोड नहीं करेंगे तो क्या वीडियो आपको देखने में आएगा, पिक्चर्स देखने में आएंगे, ऑडियो कुछ नहीं। बस हमें भी ऐसे करना है, यदि हम जितने कम चीज डाउनलोड करें, जो अच्छी है जिससे हमारा भला हो, उसको तो डाउनलोड करें और बाकी सबको डिलीट कर दें, तो टेंशन कभी बढ़ने वाला, टेंशन कम बढ़ता है। आपको जब हम अनावश्यक बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमें लेना इतना देना दो, दुनिया में क्या हो रहा है हमें ये नहीं देखना, हमें क्या करना है ये हमें देखना है। तो आप लोग अपनी जिंदगी में भी क्या डाउनलोड करना है और क्या डिलीट करना है, इसका यदि विवेक रखेंगे तो निश्चित हमारा संसार नहीं बढ़ेगा, किंतु हमारा संसार घटता चला जाएगा। हमारा जीवन में दुख और टेंशन नहीं बढ़ेगा, किंतु दुख और टेंशन से हम बचते चले जाएंगे। एक बात आपको बता रहे, आचार्य ने मुखमाटी ग्रंथ लिखा, और मुखमाटी ग्रंथ में जब माटी को कुंभ का रूप प्रदान किया गया, क्या लिखना है ऐसे पूछना है, अभी हमारी तरफ ध्यान से सुनो जो आपको लिखना है, और हम बाद में भी लिखवा देंगे। तो सबसे बड़ी चीज उन्होंने इस विषय में ये बताई है, किसी भी कार्य को जब हम करना प्रारंभ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है वो कार्य बहुत सफलता को प्राप्त होता है, तो कई बार हम सफल नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? कई बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती, और कई लोग कुछ भी नहीं पढ़ते, घूमते फिरते मस्ती करते हैं, फिर भी वो अच्छे सफल हो जाते हैं, ऐसा भी कई बार देखने में आता है। आखिर ये सब जब बातें हमारे जीवन में होती है तो हम पहले बैलेंस बना के चले। आज क्या हो रहा है, जितनी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, जैसे मान लीजिए सीए है,
अब जिसने सीपीटी दे लिया और पास हो गया वो अपने आप को सीए मानने लगता है, लेकिन वास्तव में सीए करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के साथ साथ भागता होना भी अनिवार्य है। और होता यह कि 100 बच्चे अगर सीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 5 ही बच्चे सफल हो पाते हैं, बाकी 95 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वहां पे मंजिल नहीं मिलती, किंतु बीच में ही रुक करके संतोष करना पड़ता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कई बच्चे ऐसी स्थिति में डिप्रेशन में जा रहे हैं, कई बच्चे अपनी मेहनत करते हैं फिर भी जब उनको एक सफलता नहीं मिल पाती है तो बच्चे इतने ज्यादा हताश हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी से भी हाथ धोने का वो मन बना लेते हैं। हमारे जैनाचार्यों ने कहा है किसी भी कार्य की परिपूर्णता में दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। कौन कौन से दो कारण? उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। जैसे घट बनाना है, घट माने मटका, तो जब घट निर्माण होगा तो कौन सी मिट्टी से घट बनेगा? काली मिट्टी से कि लाल मिट्टी से? काली मिट्टी से। लाल मिट्टी होगा तो घट का निर्माण नहीं होगा। तो जिस मिट्टी में घड़ा बनने की क्षमता है वह मिट्टी अपने आप में उसके लिए उपादान कारण है, और किसके निमित्त से वो घट बना? कुंभकार ने घट बनाया। घड़ा किसने बनाया? कुंभकार ने। तो कुंभकार हो गया निमित्त कारण। पहला कारण कौन सा? उपादान कारण। दूसरा कारण कौन सा? निमित्त कारण। यद्यपि वो माटी में ही घट बनने की क्षमता थी, तो कारण और कार्य, कुंभ क्या हो गया? कार्य हो गया, और मिट्टी क्या हो गई? कारण हो गई। जो कारण कार्य के रूप में ढले वो कहलाता उपादान कारण, और जिसके निमित्त से वो कार्य हो वो कहलाता निमित्त कारण। अब ये बताओ, एक काली मिट्टी जिसके पास घड़ा बनने की क्षमता है, लेकिन यदि कुंभकार का सहयोग ना मिले तो क्या मिट्टी कभी घड़ा बन सकती है? और कुंभकार बहुत अच्छा बैठा है लेकिन सामने लाल मिट्टी है तो क्या घड़ा बनेगा? नहीं। तो घड़ा जो बना है कितने कारणों से बना? दो कारण। कौन कौन से? उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण वो होता है जिससे हम कहते हैं हमारा भाग्य लक। आप लोग कहते ना भाग्य और लक, ये कहलाता उपादान कारण। यदि हमने जैसा कर्म किया है पुण्य कर्म के उदय से हमारे कार्य की सफलता मिलती है, फिर पुरुषार्थ करने से कुछ नहीं होता? नहीं, पुरुषार्थ करने से भी होता है। यद्यपि हमारे कार्य की सफलता में भाग्य भी सहयोगी है, किंतु यदि पुरुषार्थ न किया जाए तो भाग्य भी प्रकट होने वाला नहीं। अब मान लीजिए पढ़ाई ही नहीं करो और हम पास हो जाए, ऐसा होगा क्या? ऐसा भी नहीं होगा। पढ़ने का आपका पुरुषार्थ है, अच्छी मेहनत करो, अच्छे दिल लगा के पढ़ो और निश्चित आपके लिए सफलता भी उसमें मिलेगी। तो जब हम बार बार पुरुषार्थ करने के बाद भी कई बार सफल नहीं होते तो हमें ज्यादा हताश भी नहीं होना चाहिए, और यदि सफल हो गए तो ज्यादा अहंकार भी नहीं करना चाहिए कि मैंने इस कार्य को सफलता पूर्वक किया। सुख में मग्न हो कभी ना भूले, दुख में कभी ना। कहाँ पढ़ा आपने? मेरी भावना की पंक्ति है। तो हम ये समझे किसी भी कार्य की निष्पत्ति में दो कारण होते हैं। एक और उदाहरण आपको बताते हैं, विनोबा जी की कल आपको एक घटना बताई थी, ऐसे ही एक और घटना सुनी, किताब में पढ़े कि विनोबा जी की माँ जो थी वो क्या करती थी, दही जमाती थी और जब दही में जामन डालती थी तो राम 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 कहते कहते जामन, दही किससे जमता है?
दूध में जामन डालना होता है तो दही जम जाता है। तो उनकी माँ जब जामन डालती थी तो क्या बोलती थी, राम 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 कहते कहते जामन डाल देती थी। अब विनोबा जी जब छोटे थे प्रतिदिन इस क्रिया को देखते थे। एक दिन उन्होंने माँ से पूछा, माँ ये बताओ दही जो जमता है वो जामन से जमता है कि राम के नाम से जमता है? तुम जब जामन डालती राम राम कहती ऐसा क्यों होता है? तो माँ मुस्कुराई, माँ ने कहा बेटा दही तो जामन से जमता है किंतु कई बार ऐसा होता है जब मैं सुबह उठ करके वो दूध में जिसमें जामन डाला था ढक्कन खोल के देखती हूँ तो दही बहुत अच्छा जमा होता है। तो मैं कहती चलो राम की मर्जी, इसमें मैंने क्या किया, अहंकार भाव मेरे मन में पैदा नहीं होता। कई बार जब मैं ढक्कन खोल दी तो दही बिल्कुल अच्छा जमा नहीं मिलता तो मैं सोचती चलो राम की मर्जी, अच्छा नहीं जमा तो कोई बात नहीं, मैं दीनहीन भी नहीं बनती। हम बहुत जल्दी या तो दीनहीन हो जाते हैं या बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं। वास्तव में किसी भी कार्य की सफलता में दो कारण हुआ करते हैं, इसीलिए कभी हमारा भाग्य प्रबल होता है तो थोड़े से पुरुषार्थ में लाभ मिल जाता है और कभी भाग्य प्रबल नहीं पुरुषार्थ हम बहुत अच्छा करते हैं तो भाग्य भी हमारा साथ दे देता है। इसलिए सिद्धांत को अपने को समझना होगा कि किसी भी कार्य की निष्पत्ति में एक ही कारण पर्याप्त नहीं है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम कहते हैं हमारा भाग्य ने साथ दिया, कई बार कहते हैं हमने बहुत मेहनत की तो हमें लाभ मिला। आज जितने भी फॉर्म्स वगैरह आप देखेंगे या जितने भी वीडियोज वगैरह आप यूट्यूब वगैरह में डले हैं वो हर व्यक्ति आपको पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करेगा। ये मेहनत को जज्बा होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, आपके लगन होनी चाहिए और ऐसा करें आप सफलता आपको मिलेगी। और सभी लोग उस वीडियो को देखते हैं लेकिन उसके बाद भी उतने ही लोग सफल हो पाते हैं। फिर जो असफल हो जाते हैं उनकी जिंदगी बहुत एक कहने से अपने आप में निगेटिव थॉट उनके भीतर पैदा होने लगते हैं। इसलिए हमारा कहना उस समय आप ये विचार कीजिए कि हमने पुरुषार्थ को बहुत अच्छा किया किंतु अभी हमारा भाग्य साथ, उस समय क्या करना है कि हमारा भाग्य कैसे निर्माण हो। अभी कल जैसे हमने आपको बताया था गिरीश भगवान की भक्ति आप करते इससे हमारे पाप कर्म का क्षय होता है। आचार्य महाराज के आशीर्वाद से आप इतने भैया बहन लोग और बढ़िया डिप्टी कलेक्टर उसके पद पर आती हैं। एक उदाहरण आपको बताते हैं, एक गुना की दो बेटियां हैं जिनका नाम सपना और सोनाली था। जब हमारा उनके यहाँ चातुर्मास हुआ 2004 में गुना चातुर्मास हुआ और उन बेटियों के यहाँ पर हमारा आहार हुआ और वहाँ पर गुना में सब जगह पाठशालाएं खुलवा रहे थे लेकिन जहाँ पर वो बेटियाँ रहती थी वहाँ पर कोई पाठशाला मंदिर भी नहीं था। सुन रहे आप लोग नहीं सुन रहे हो कहाँ सुन रहे सुन रहे सब लोग? अब वो वहाँ पर जो है उनके यहाँ मंदिर ही नहीं था, कैसे पाठशाला खोले? फिर भी जब सब मोहल्ले में पाठशाला खुल रही थी उन्होंने ही भावना भाई और अपने यहाँ पर अपने घर में ही बच्चों की पाठशाला शुरू कर दी और पाठशाला शुरू कर दी। और इसके बाद जो है बच्चियाँ जब उनकी अपनी स्कूल की पढ़ाई भी चल रही थी और उन्होंने पीएससी के एग्जाम दिए और पीएससी के एग्जाम देने के बाद दोनों बहनों ने पहली बार में ही, सुनना आप लोग, पहली बार में ये छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों पीएससी की परीक्षा उन्होंने पास कर ली और इंटरव्यू में ये दोनों का सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद जो अभी वर्तमान में एक बहन भोपाल में जो है उज्जैन में डिप्टी कलेक्टर है और दूसरी बहन अभी इंदौर में सराफा में एसडीएम है और दोनों बहनें इतने उच्च पद पर पहुंच गए। जब वो पहली बार हमारे पास दर्शन करने आई तो उन्होंने बताया, महाराज हमने अपने जीवन में और जब से हम धर्म से जुड़े और जब से हमने पाठशाला आदि पढ़ाना शुरू किया तब से हमारा जीवन में एक नई दिशा मिली और हमारे लिए सफलता जो मिली ये पाठशाला पढ़ाने का ही फल है। इतना सुन के हम तो ठीक है लेकिन जब 2013 में नहीं जब 2013 में हमारा सातवां मास चल रहा था कहाँ पर, भोपाल में चातुर्मास था और ऐसे बच्चों का हम कार्यक्रम ले रहे थे। दिशा बोध नाम का एक कार्यक्रम लगा, एक दिन का मात्र बच्चों के लिए कार्यक्रम था और वो दीदी जो SDM दीदी है वो वहाँ पर आए, तो हमने कहा आप भी अपना कुछ वक्तव्य बच्चों के लिए दें तो जिससे बच्चों को और दिशा बोध मिले। तो उन्होंने एक बात बताई कि शायद आपके लिए दिल में छूने वाली वो बात होगी। उन्होंने कहा मैं इस मंच पे खड़े होकर के पहली बार वो बात महाराज जी को बता रही हूँ, शायद वो बात महाराज जी को भी नहीं पता। कौन सी बात है? बोले जब हमारे यहाँ पर महाराज जी का आहार हुआ था और हम दोनों बहनें महाराज जी को छोड़ने के लिए उनके भवन में जहाँ हम संत निवास में पहुंचे और किसी व्यक्ति ने कहा महाराज इन दोनों बहनों को आलू प्याज का त्याग करा दो, ये लोग आलू प्याज खाते हैं। तो हमने कहा वो तो आलू प्याज खाती नहीं होंगी। हमने क्या कहा? उनको त्याग नहीं कराया। फिर हमने कहा वो तो आलू प्याज खाती नहीं होंगी, उनको क्या त्याग कराना, क्योंकि वो पाठशाला भी पढ़ाती हैं, संस्कारवान है, वो तो खाती नहीं होंगी। अब उन्होंने कहा उस समय तो हमने कुछ नहीं बोला और वहां से लौट करके जैसे हम घर आए, सन 2004 की बात है, 2013 है, 9 साल हो गए हमने आज तक आलू प्याज का सेवन। उस समय हमें ये लगा कि गुरु को हम पर इतना विश्वास, गुरु को हम पर कितना विश्वास कि आलू प्याज खाते नहीं होंगे। वास्तव में उस समय आलू प्याज भी खाते थे, किंतु जब हमें लगा कि गुरु का हमारे ऊपर इतना विश्वास तो हमें भी तो गुरु का विश्वास कायम रखना है। आज उतने उच्च डिप्टी कलेक्टर SDM के पोस्ट पर है, लेकिन आज भी वो कभी आलू प्याज का भी सेवन नहीं करते, रात्रि भोजन नहीं करते। उन्होंने बताया कि हमने कभी अभी बच्चों को बेकरी आइटम नहीं खिलाया, जो पॉले रियो दुनिया भर के बिस्किट है, क्रीम रोल है, क्या क्या आते ना बेकरी आइटम को आप कहते, ना वो खाती है ना अपने बेटियों को उन्होंने खिलाया। और ऐसा पुण्य का योग उनका बना, दोनों बहनों का एक ही मंच पर विवाह हो गया और उनके जो पति थे उनसे कई गुना और अधिक धर्मात्मा उनको मिली। हम ये सोचते हैं कि धर्म से अगर हम जुड़ेंगे तो हमारे सारे शौक छूट जाएंगे, हम धर्म से जुड़ेंगे तो हमें आनंद जो मिल रहा है वो कम हो जाएगा। बुद्ध ये बहुत गलत धारणा है, जो जो धर्म से जुड़ता है उसके जीवन में आनंद कई गुना हो जाता है। हम जितने पाप से जुड़ते हैं उससे उतना हमारा जीवन दुखी बनता है, लेकिन क्या करें ऐसे अज्ञान के कारण धारणा ये बनी है। भैया सुन रहे हैं पीछे वाले, हमारी तरफ देखो, कान से तो सुन रहा है मन से भी सुन रहा है, पर जो हम सोचते हैं कि हमें पाप करने से ज्यादा सुख मिलेगा, किंतु वास्तव में पाप करने से सुख नहीं मिलता किंतु दुख ही दुख मिलता है। और जिन्होंने पाप को छोड़ दिया, जितनी आप बुराइयों से बचेंगे उतना आपका जीवन सुखी और आनंदमय बनेगा। कल हमने आपको बताया था 5 पाप के विषय में चर्चा की थी, हमारा भाग्य कैसे बने। महाराज आशीर्वाद दे दो हम सफल हो जाए, हम तो आशीर्वाद दे देंगे किंतु उसको आशीर्वाद फलता क्यों नहीं। इसका कारण ये है कि हम आशीर्वाद आपको देते हैं किंतु आपने उतने आशीर्वाद लेने की क्षमता ही नहीं है, तो आशीर्वाद भी फलता नहीं। उन बेटियों ने जो बताया वास्तव में आज हमने, उन्होंने जैसे जैसे 5 पाप का त्याग करते चले गए आज उतने उच्च पद पर हैं। लेकिन अब जब हम लोग कभी पहुंचते इंदौर में थे तो वो मैडम पूरी गाड़ी लेकर के और हमेशा रोज दर्शन करने आ जाए। आज गुरु जी आकर्ष के आशीर्वाद से बड़े बड़े उच्च पदों पर, वो दीदी तो आपके सामने ही है, एक इंस्पेक्टर दीदी और एक डॉक्टर दीदी, आप बताओ तुम तो बिगड़ सकते ही बेटा। एक आपके शरीर की चिकित्सा और एक मन की चिकित्सा, दोनों चिकित्सा आपको मिले नहीं मिले बताओ कैसा लगा दोनों में। हमारा ठीक है, दीदी का प्रैक्टिकल ही है, वो तो रोज आप लोगों जैसे उद्यमी लोगों से पारा उनका पड़ता रहता है, उन्होंने कई लोगों को ठीक कर दिया ठोक छाप करके, तो मुझे ठोक छाप में भी स्पेस नहीं है। लेकिन ये सब आप लोगों का सौभाग्य है, पुण्य है कि योगा योग ऐसा बना, हमने महाराज जी से चर्चा की और दीदी का भी आना और यहाँ पर ये योग बन गया। वास्तव में जितने विद्यार्थी अंतरंग से अपना आत्मित चाहते हैं अपने को ये लगता है कि हमें कुछ करना है देश के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, और हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है कि हम वास्तव में कांटों के बीच में रहकर के गुलाब के समान खिलते रहे। मत कहो कभी अपने दिल खराब है, कांटों के बीच गिर गए समझो गुलाब है। अरे गुलाब का फूल तो कांटों के बीच में ही खिलता है। सैकड़ों संकट हमारे जीवन में आ जाए किंतु हमारा जीवन गुलाब के फूल की तरह महकता रहे और सारी जिंदगी दूसरों के लिए अब काम आ सके, इससे बड़ा हमारा जीवन और क्या है। लेकिन बंधुओं, जब हम अच्छे बनेंगे तभी तो दूसरों के लिए अच्छे हो सकेंगे। पांच पाप से हम डरना चाहिए। हम डरते किससे हैं? महाराज जी से, माता जी से, मंदिर से, इसे डरने की चीज नहीं है। यहाँ तो निर्भय होकर के जाना चाहिए, यही हमारा कल्याण है। डरना चाहिए तो पांच पाप से डरना चाहिए। ये बताओ, एक दिन हमने प्रवचन में कहा था, आप बच्चों से भी पूछ लेते हैं, पांच पाप तो आपको पता है ना, सब बच्चे पाठशाला पढ़े। जब हम यहाँ पर आए थे और शुरू में पाठशाला खुले थे, 400-500 बच्चे पाठशाला में थे, बताते सब बच्चे पाठशाला में पढ़े। अब ये बताओ, पांच पाप करना सरल है कि पांच पाप नहीं करना सरल है? बस लाया समझ में, पांच पाप करना सरल है कि पांच पाप छोड़ना सरल है? अब ये बताओ, तुम्हें ऐसा बता दें। पांच फिर से सुन लो, प्रश्न दिमाग लगाओ थोड़ा, नहीं हो तो भी अलग करके दिखाओ, शायद दिमाग में चली जाए, नहीं लगाए रहो वो तो कहीं। पांच पाप करना सरल है कि पांच पाप छोड़ना सरल है? जल्दी बोला तो कोई बोल नहीं रहा बच्चे। पांच पाप करना सरल है, पांच पाप छोड़ना कठिन है। अच्छा ही होता, पक्की रही बात। फिर से, पांच पाप करना सरल है कि पांच पाप छोड़ना सरल है? बहुत से लोग नोटा वाले हैं, ना इधर बोले ना उधर बोले, महाराज जी जो कहेंगे वो मान जाएंगे। अच्छा, पांच पाप करना सरल है, कौन कौन इस पक्ष में हाथ उठा जल्दी से, चलो नीचे करो। पांच पाप छोड़ना सरल है, कौन कौन मानता है? चलो हाथ नीचे करो। अब देखो, वास्तव में पांच पाप करना बहुत कठिन है, पाप छोड़ना बहुत सरल है। अच्छा ये बताओ, पहला पाप कौन सा? आज हम पड़ोसी को मारेंगे, ये नियम सरल है कि आज हम किसी को नहीं मारेंगे? ये नियम सरल है, आज हम पड़ोसी को मारेंगे, अब उसको मारने उसको हम एक मार तो छोड़ेगा क्या? तो दूसरों को मारना कौन सा पाप है? और आज हम किसी को नहीं मारेंगे, ये क्या हो गया? धर्म हो गया। तो किसी को मारना सरल है कि किसी को नहीं मारना सरल है? समझे तो नहीं मारना तो सरल है। अब चलो दूसरा पाप, झूठ बोल। झूठ बोलना सरल है कि झूठ नहीं बोलना? आज हम झूठ बोलेंगे, तो झूठ बोलने के पहले कितने देर पहले से प्लानिंग बनानी पड़ती है, और प्लानिंग बनाने का एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलना पड़ता है? आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, करके देखना प्रैक्टिकल। हमें कोई डर नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जैसा है हम वैसा बोलते हैं, झूठ बोलने नहीं। और जिसको झूठ बोलना होता है, कितनी मेहनत करना हो झूठ छुपता नहीं है, कितना भी आप कोशिश करना, झूठ आज नहीं तो कल प्रकट हो ही जाता है। झूठ बोलना क्या है? पाप। और झूठ नहीं बोलना क्या है? धर्म। अच्छा, तो झूठ बोलना सरल है कि झूठ नहीं बोलना? नहीं बोलना सरल है ना, चलो आ गए। तीसरी बात, चोरी करना सरल है कि चोरी नहीं करना? आज हम पड़ोसी के बैग से पेन चुराएंगे, या कोई चीज आपको चुराना हो, कितनी क्या करना पड़ेगा? समय ढूंढना पड़ेगा, जब वो देख ना रहा हो, कोई देख ना ले, और चोरी करना। और चोरी करने वाला बताते हैं कि उसकी दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है कि साल भर बाद भी अगर कोई चोर पुलिस वाले को देख ले और मसीह आने लगे सुना कि उसके खड़ा कर दो तो पता चल जाता ये चोर है। अब देखो चोरी करना कितना कठिन काम है और चोरी नहीं करना बहुत सरल है। आज हम चोरी नहीं करेंगे, डोंट माइंड, कोई टेंशन नहीं काम का, किंतु आज पड़ोसी के बैग से पैसे चुराना है। आप देखो कितना वो किस तरह से अपने उसको प्राणी बनानी पड़ती है। तो चोरी नहीं करना सरल कि चोरी करना सरल है? अब बताओ तीन पाप में आप हमारे पक्ष में हो गए ना, अब चौथा पाप है कुशील पाप। कुशील पाप किसी के देकर हमने आपको बताया, दीदी ने भी क्लास में बताया और आज आप लोगों का योग हो तो और अच्छे से बात मिलेगी, भैया लोगों की भी अभी क्लास अलग से लगेगी। कुशील पाप किसी के अपने कल चर्चा की थी, जब शादी हुआ तो आप लोग जो भी नहीं क्यों ना बच्चों के विषय में चर्चा करने, जब लड़के लड़के आपस में मित्र बनते हैं और मित्र बनने के बाद एक दूसरे के साथ वो कहना चाहिए, जिस तरह से शादी के पहले यदि कोई दोस्ती करते हैं गलत काम करते हैं तो कितना कठिन है, कितना छुप छुप के करना पड़ता, कोई देख ना ले और कैसे मन में तड़फन होती है। आज सबसे बड़ी चीज है कि जो हमें जिस भूमिका में जिसकी आवश्यकता नहीं वो चीज मिलना भी नहीं, फिर भी हम तड़प रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, कुछ हमें मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है। उसी पाप करना बहुत कठिन है, लेकिन हाँ जब तक हमारा विवाह नहीं होता तब तक हम किसी प्रकार से लड़के लड़की आपस में मित्रता वासना की दृष्टि से नहीं करेंगे। पढ़ाई लिखाई अलग बात है किंतु मन में ऐसा पाप नहीं रखेंगे। ये कठिन है कि कुछ पाप करना कठिन है। एक संकल्प पाप ले लेंगे, संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है। विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य जीवन माना जाता है, जो ब्रह्मचर्य व्रत के साथ और इस प्रकार के बुरे परिणामों से बचते हुए अपनी पढ़ाई करता है उसके लिए बहुत सरल है। बंधुओं कुशील पाप करना बहुत कठिन है, हमारी पढ़ाई गायब हो जाती। कई एक बेटी ने बताया है, वो भैया ने, कि वो इतनी अच्छी बेटी थी, वो हमेशा 80-90% लाती थी, किंतु 12वीं कक्षा में उन्होंने किसी से दोस्ती हो गई और परिणाम ये निकला कि उस साल उसके 50% भी नहीं आए। हम मम्मी पापा को भले तो मुरली बनाओ कि हमारे लिए तो याद नहीं होता, किंतु याद क्यों नहीं था, इसका कारण हमारी मित्रता ही हमारे लिए बाधक। तो कुशील पाप करना सरल है कि कुशील पाप नहीं करना सरल है? रावण को जब सीता का हरण करना था तो रावण ने किसका रूप धारण किया था बताओ? रावण ने जब सीता का रूप रावण जब सीता का हरण करने वाला था तो भिखारी बना था, दुष्ट बना था, नहीं बना था रावण? देखो ये कुशी पाप का परिणाम है कि राजा को ये भिखारी बनना पड़ता है। कल हमने सुनाया था मुझे गर्लफ्रेंड वाला एक भिखारी का भीख मांग रहा था, सुनाया था आप लोगों ने? ये भिखारी रोड में खड़े हुए भीख मांग रहा था, सुन लो भैया तुम लोग, और भीख मांग रहा था तो मारो बोले भैया मुझे कॉफी पीना है पैसे दे दो, तो 10 रुपए की कॉफी आ गई। उसने भिखारी को 10 का नोट पकड़ा लिया, बोले 10 रुपए नहीं चाहिए 20 रुपए चाहिए। बोले क्या 20 रुपए क्या करोगे? बोले 10 रुपए में एक कॉफी आती है। बोले मेरी गर्लफ्रेंड है उसको भी पिलाना पड़ेगा। बोले यार 10 रुपए की बात करते हो भिखारियों की गर्लफ्रेंड रखते हो? बोले उसी ने तो भिखारी बनाया, उसी की वजह से भिखारी बन गया। बात ऐसी है कि वास्तव में हम जिसको सुख का सागर मानते हैं वो दुख का कारण बन जाता है, पर वो रावण जो कि चक्र वो कहना कि अर्ध चक्री था, सोने की जिसकी लंका थी, खूब मंदोदरी के साथ सुख से रहता, किंतु जब सीता का मन में भाव आ गया, सीता के साथ पाप करने का भाव मन में आया, तो सुन रहे आप लोग, राजा भी भिखारी बन गया। किसी प्रकार तुम लोग भी भिखारी बन जाते हो, घूम रहे पीछे पढ़ाई लिखाई सब छोड़ करके। ये कुशील पाप बहुत कठिन है और कुशील पाप नहीं करना बहुत सरल है। विद्यार्थी जीवन में संकल्प ले लेना कि हम जब तक पढ़ेंगे, फिर हमने आपको कल बताया दिया था 19 तीर्थंकर में से 24 में से 19 की पार्टी के बनो चाहे हमारी पार्टी के बनो, नहीं तो 19 की पार्टी के बनो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक पढ़ रहे हो तब तक इस पाप से बचो। पांचवी चीज परिग्रह। परिग्रह जोड़ना सरल है कि परिग्रह नहीं जोड़ना सरल है, इकट्ठा करना हो कितनी मेहनत करनी होती है, किंतु आज हम कोई परिग्रह नहीं जोड़ेंगे, जितना हम उसी में संतोष और सुखी रहेंगे। वास्तव में जितना धन जोड़ा जाता है, जितना पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो बहुत कठिनाई के साथ इकट्ठा होता है। इसीलिए पांच पाप करना बहुत कठिन है बंधुओं, और पांच पाप छोड़ना बहुत सरल है। अभी एक बहन का किसी का प्रश्न आया था, क्योंकि कल बहुत सारे प्रश्न थे उसी प्रश्न को लेकर के, कि मान लीजिए किसी बेटा बेटी जो जैन कुल में जन्म लिए हैं, और यदि उनका आपस में मित्रता हो जाती है और आगे उनका विवाह करने का भी मन अगर बन जाता है, तो क्या हमें पहले मित्रता करना उचित है कि अनुचित है। तो एक शंका समाधान सुधा सागर महाराज जी का चल रहा था, उस समय एक चर्चा भी करी और हमने भी सुना है कि विवाह के पहले प्री वेडिंग कोई कार्यक्रम चलने लगा, शादी के पहले ही लड़के लड़के आपस में कुछ फिल्म वगैरह बनती है और वो जो पर्दे आदि पर दिखाई जाती है, और एक महिला संगीत होता है, जानते हैं आप लोग, महाराज उसी के लिए तो हजारों रुपए खर्चा करके सीखते हैं। वो महिला संगीत में भी इस तरह से जो वर वधु बनने वाले होते हैं वो साथ में जाकर के डांस करते, हमने तो कभी देखा नहीं अपने जीवन में। लेकिन आज की ये नई परंपरा है कि वर वधु जाकर के, जिनका विवाह अभी नहीं हुआ, वो भी वहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और डांस करते हैं। वास्तव में पति पत्नी सब बनते हैं एक बेटा बेटी जो विवाह करते हैं। पति पत्नी कब होते हैं, जबकि शादी के समय बरमाला होने के बाद फेरे पड़ते ना, फेरे हैं, फेरे पड़ते जानते, हाँ सात फेरे पड़ते, कितने फेरे पड़ते देखा तो होगा ना हैं। अब वहाँ भी जब सात फेरे पड़ते हैं, तो जब छठवां फेरा पूर्ण हो जाता है, उसके बाद फिर एक बार पूछा जाता है, बताओ एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में तुम स्वीकार करते हो कि नहीं, अभी भी तुम पति पत्नी नहीं बने। जब सातवां फेरा पड़ जाता है, तब वो ना कहना चाहिए बेटा बेटी आपस में पति पत्नी के रूप में समाज को स्वीकार होते हैं। अर्थात सातवां फेरा पड़ने के पहले अगर एक लड़के लड़की एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं, तो महाराज ने उस समय कहा था ये व्यभिचार है, ध्यान रखो। इसीलिए शादी के पहले जब तक सातवां फेरा ना पड़ जाए, तब तक पति पत्नी को नहीं माने जाते, और पति पत्नी को हमारे यहाँ समाज में सम्मान मिलता है, आदर्श माने जाते हैं। लेकिन शादी विवाह होने के पहले जो लड़के लड़के मित्रता करते हैं, और यदि हाथ भी पकड़ते एक दूसरे का, तो व्यभिचार है, ये कुशील पाप है। विवाह हो गया फिर आप पति पत्नी बन गए, फिर कोई दोष नहीं, वही संतान शादी के बाद उत्पन्न होती है तो समाज में परिवार में आनंद छा जाता है, और वही संतान यदि विवाह के पहले उत्पन्न होती है तो कुंती ने जो बड़ा पुत्र था कौन, द्रोणकर्ण, बड़ा पुत्र था कर्ण का, पांचों पांडवों का बड़ा भाई था, किंतु उसको नदी में बहाना पड़ा क्योंकि समाज में बेइज्जती हो जाएगी। और वही जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ, सारे नगर में मिठाई बांटी गई, कारण क्या हुआ, पुत्र तो दोनों का था, पांडु और कुंती से संतान का जन्म हुआ, लेकिन अंतर कितना आ गया, एक शादी के पहले हुआ था और एक शादी के बाद। इतना ही हमें समझना, शादी के पहले अगर आप वो काम करते तो महान पाप है, कुशील पाप है, और विवाह के बाद अगर करते हैं तो उतना पाप नहीं है, समाज इसकी अनुमति देती है, गुरु इसकी अनुमति देते हैं, इसलिए मित्रता अगर करते भी हो परिवार भी मंजूर है, लेकिन इसके बाद भी हमारी तो यही मर्यादा हुआ करती है। हमें तो इतना ध्यान है, जब हम लोग घर में थे तो बहनों को तो पता ही नहीं होता था कि उनके कौन पति है, कौन ससुराल है, क्या है, जो माता पिता कर देते थे वही उनको मंजूर होता था, और वो वहाँ पर जाते सुखी जीवन व्यतीत करते थे। तो पांच पाप करना बहुत सरल है कि कठिन है? पांच पाप करना बहुत कठिन है और पांच पाप छोड़ना बहुत सरल है। यदि आप चाहते हमारा भाग्य निर्माण हो, आप पांच पाप छोड़ के देखे, ऐसे सैकड़ों दृष्टांत आपको मिलेंगे। जैसे जैसे आप पाप से बचते चले आएंगे, आपका भाग्य भी उज्ज्वल बनता चला जाएगा। कुछ संख्याएं जो रह गए थे इसका हम समाधान कर देते हैं 15 मिनट में। आगे फरमाएंगे, मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी नहीं हो पाता। इसका कारण ये है कि दीपक की लो अगर एकाग्र नहीं है तो हम क्या करते हैं? आपने कभी बीड़ी पी क्या? बीड़ी सिगरेट नहीं आगे कर नहीं थी? एक बार गर्म गोदाम बताते चढ़ने का, जैसे किसी ने बताया था चढ़ने, अब नहीं पीना तो पीने का मन तो नहीं है। इधर बहनों में किसी का, अरे एक बहन हमारे पास आई थी, वो महाराज कहने लगे, महाराज जी हमारे फ्रेंड्स को कहते हैं जिंदगी में सब काम करके देखना चाहिए, एक बार तो जिंदगी मिली है। तो हमने उससे कहा बेटा जहर भी खा के देख लेना। अच्छी लगी बात, तो आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे क्या? सुनो, हर काम जिंदगी में करके नहीं देखा जाता और हर काम वक्त पर किया जाता है। उम्र से वक्त आने से पहले अगर ही उसने पूछा महाराज सिगरेट पीने में कौन सा पाप है, और हर काम करके देखना कि यार धारणा फ्रेंड सर्कल में बन रही है कि हर चीज करके देखो, एंजॉय करके देखो क्या होता है, नहीं ये बहुत गलत दुष्प्रचार हो रहा है। हर चीज का वक्त होता है और समय से पहले यदि वो घर के आप देखेंगे तो निश्चित आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और सिगरेट आदि नशा तो कभी भी सुख का कारण होते ही नहीं। हाँ, अब ये बताओ अभी तक आप लोगों ने किसी ने बीड़ी सिगरेट नहीं पी और पीना भी नहीं है पक्का? वैसे तो कल महाराज जी ने कहा था आज अपन नियम ले लेते कि हम कभी जिंदगी में बीड़ी सिगरेट नहीं पियेंगे और तम्बाकू नहीं खाएंगे, ले सकते नियम सब लोग? कल महाराज जी ने लिया होगा ना? चलो एक बार और पक्की करो, जबल सीर लग जाएगी तो पक्का काम हो जाएगा कि जिंदगी में कभी हम बीड़ी सिगरेट तम्बाकू व्यसन आदि नहीं करेंगे। शराब से कारोबार देसी वाली विदेशी, चलो तो बीड़ी सिगरेट शराब तम्बाकू आदि हम इसका सेवन नहीं करेंगे, ये एक संकल्प। फिर भी कभी देखा तो होगा ना बीड़ी सिगरेट पीने वालों को, वो कैसे पीते? बहुत ठंडी हवा चल रही हो तो ऐसे माचिस जला करके, और हमने भी कभी नहीं की लेकिन देखी जरूर है। कितनी भी आंधी तूफान चल रही हो, ठंडी हवा चल रही हो, लेकिन वो इतनी सांप की ओट उसको दे देते हैं कि सिगरेट और बीड़ी जल जाती है। या कभी दीप प्रज्वलन करते हैं, जो कि जो दीप नहीं जलता तो ऐसा दीपक जला देते हैं, अर्थात वो जो दीपक बुझ रहा था वो किसकी वजह से बुझ रहा था? बाहर की हवा की वजह। फिर आप क्या करते हैं, उसमें एक कांच की पायरी आती है, कांच की लालटेन होती है ना, लालू जी की लालटेन, अब तो बुझ गए लालू जी भी जेल जाकर चले गए, बिहार के मुख्यमंत्री भूतपूर्व, अब तो बताने का उनको जेल हो गई है। वो लालू जी की लालटेन देखी है ना, और लालटेन में ऊपर एक कांच लगा होता है, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए लेकिन वो बाकी कभी भी हिलती नहीं है। बस हमारे मन में अगर कहीं एकाग्रता का कहीं अभाव है तो उसका कारण यही है कि हम बाहरी आंधी तूफान से प्रभावित हैं। फिर क्या करना, एक कांच का उसके आवरण लगा देना। कौन सा आवरण लगा दे महाराज? यदि आप पढ़ने बैठते हैं एक घंटे मौन ले लेना, कि हम किसी दूसरों से बात नहीं करें, अपना पढ़ेंगे, जोर जोर से पढ़ो। मन की एकाग्रता का सबसे बड़ा कारण ये कि हम जो बातें करते हैं ना, पढ़ते समय भी बातें करते हैं, खाते समय भी बातें करते हैं, सोते समय भी बड़ा बड़ाते हैं, खेलो सोते समय भी बड़ा बड़ाते हैं। पहली बात तो आप जितनी जिनका ये प्रश्न है सभी बच्चे मन बना ले कि दो प्रतिदिन दो घंटे हम मौन रहेंगे। मौन रहने का तो किसी से बोलेंगे नहीं, अपनी मात्र पढ़ाई करेंगे, पहला कारण। और दूसरा कारण है टीवी, आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये टीवी के कारण ही मन की चंचलता नष्ट हो रही। आगे पेपर में भी आया था आज बच्चे जितना टीवी देख रहे हैं, आज ये नियम ले लो कि हम परीक्षा का टीवी बिल्कुल नहीं देखेंगे। अब टीवी में जो दृश्य हम देखते हैं उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता। महात्मा गांधी ने एक बार सीरियल देखा था हरिश्चंद्र नाम का, और उस नाटक देखा था, उस नाटक को देखकर के उनके मन में ऐसा प्रभाव पड़ा, उन्होंने संकल्प ले लिया, पीछे वाले भैया सुन रहे, उन्होंने संकल्प ले लिया मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। और आए हम जब टीवी देखना है, टीवी में क्या देख रहे हैं आप लोग बताओ। अभी रिपोर्ट के मुताबिक एक 20 साल की उम्र तक जो बच्चा लगातार टीवी देखता है वो 30,000 से ज्यादा मर्डर के केस देख चुका होता, 40,000 से ज्यादा रैप बलात्कार के केस वो टीवी में देख चुका होता। वो टीवी में जो हम दृश्य देख रहे हैं उसका हमारे मन पर इतना दुष्प्रभाव पड़ रहा है कि हम मन एकाग्र नहीं होता। इसलिए एक टीवी देखना बंद कर दो, 2 घंटे मौन ले लो। इसी प्रकार ये भैया लोग जो व्हाट्सएप आपके चलाते हैं, कुछ नहीं होता। देखो व्हाट्सएप में जितने भी मित्र बनते हैं ना वेश्या के समान होते हैं। सुन लो, व्हाट्सएप में जितने आपके मित्र बन रहे हैं 2-4, 10 को छोड़ दो, 90% मात्र आपके पास जब तक पैसा है तब तक वो आपके साथी है। अन्यथा कोई भी मित्र, एक व्हाट्सएप में एक दिन में 100 मित्र बनाना सरल है, किंतु 100 मित्रों में एक ही कोई तुम्हारे काम आ जाए ये बहुत कठिन है। इसीलिए व्हाट्सएप में अपना समय बर्बाद मत करो। 10 बजे आप अपना मोबाइल बंद करके रख दो। देखो मन कैसे एकाग्र नहीं होता। हम ही अपने मन को चंचल, 3 बातें आपको बता दी, 2 घंटे मौन रखो, टीवी देखना कम करो, विशेष न्यूज है समाचार है अलग बात से आपका ज्ञान बढ़े, और 3री बात जो आपको क्या बता दी, व्हाट्सएप आदि से बचो। 4थी बात आपको हम बता रहे हैं करके देख लेना, ये आलू प्याज कहने के जमीन के भीतर जो फल होते हैं आलू प्याज वगैरह जमी कर, इनसे भी हमारी बुद्धि ठप हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसलिए अच्छे लौकी की सब्जियां ऊपर लगने वाले फल फूल का आप सेवन करें, भोजन की पवित्रता बनाए रखें। ये जितने बेकरी आइटम वगैरह आप खाते हैं सबसे कुरकुरे हैं चिप्स हैं ये दुनिया भर, इससे भी हमारी बुद्धि की चंचलता बढ़ रही है और एकाग्रता नष्ट हो रही है। खान पान की पवित्रता रखें, इससे आपका जीवन सुखी बनेगा। सिद्ध प्रभु के 8 मूल गुण होते हैं और श्रावक के भी 8 मूल गुण, ऐसा क्यों? सिद्ध भगवान तो मोक्ष जाने के बाद होते हैं, हमारे 8 मूल गुण संख्या 8 होने से एक ही नहीं होते, हमारे गुण अलग होते हैं जिससे हम पवित्र बन सके। मेरा प्रश्न है कि मैं अपनी दादी को मंदिर लेकर जाती हूँ लेकिन उनका जरा भी मन नहीं लगता, ना बोलती ना कभी मंदिर में जाने के लिए, मुझे पाप लगेगा या पुण्य? देखो हम एक दूसरे के प्रति कर्तव्य कर सकते हैं, हमारा भाव है कि हमारे निमित्त दादी के परिणाम अच्छे बने तो आपको तो पुण्य ही लगेगा, भले वो वहाँ पर जाके अगर नहीं भी कर रही है इसमें आपको पुण्य नहीं रहेगा, पाप नहीं लगता। हमारे जीवन में मुख्य रूप से किन चीजों से बचना चाहिए, किन चीजों को अपनाना चाहिए जिससे हमारा जीवन पतंग की ओर जाता हो, ऐसी चीज आपको पता है? जिस काम को छुप छुप के करना होता हो, सीधी एक ही बात आपको बता रहे, जिस काम को अगर छुप के करना हो कोई देख ले तो बुरा मानेगा, ये काम कहलाता है पाप। और जिस काम को करने में हमें कोई भय नहीं है, सब लोग उसको अच्छा मानते हैं, वो काम कहलाता है अच्छा कार। तो अपन स्वयं समझते हैं कि हमारे जीवन में मुख्य रूप से किन चीजों से बचना चाहिए, इसी बात को लेकर के कल दीदी ने भी आपको 1 घंटा बताया, हम भी जो सुबह से शाम तक यही चर्चा कर रहे हैं, बुराइयों से बचो। भाई लोगों से हमारा कहना है व्यसनों से बचो, आज शराब है, बीड़ी सिगरेट है, तम्बाकू है, पाउच है, ये सब हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और मित्रता में देखने और दिखाने के लिए हम इन वस्तुओं का प्रयोग कर लेते हैं, व्यसनों से आप बचेंगे और शाकाहारी भोजन अपनाएंगे, निश्चित आपका जीवन अच्छा बनकर चला जाएगा। नमोकार मन की जाप जिस दिशा में हिलना चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो क्यों? जितना आप एकाग्र होकर के नमोकार मंत्र का जाप करेंगे उतनी मन की स्थिरता होगी और हमारे अशुभ कर्म का क्षय होगा। यदि हिलना पड़ता है या हिली जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन एकाग्र मन के साथ किया हुआ कार्य तीव्रता से सफलता को प्राप्त होता है, मन वचन काय तीनों की एकाग्रता होनी चाहिए तो सफलता हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। जब आप परीक्षा रूम में बैठते हैं, पेपर देने जाते हैं ना, तो जब मन लग रहा हो आपको सब बन रहा हो, उस समय ना हाथ हिलता है ना मन लिखते समय, बाकी कितनी भी गर्मी हो तो पता नहीं चलता, प्यास लगती क्या है। लेकिन यदि पेपर नहीं बन रहा तो एक घंटे का इंतजार करते, कब एक घंटे बाद पानी आने लगता है, छुट्टी देते हैं तो बस टॉयलेट जाना ये करना कब। लेकिन अगर पेपर बन रहा हो तो कहीं भी उपयोग नहीं जाता। इसीलिए जब हमारी एकाग्रता होती है ना तो मन शरीर भी नहीं हिलता, एकाग्रता नहीं होने से ऐसा होता है। हम अच्छे इंसान कैसे बने, इसी के विषय में आपको दो तीन ऐसे व्याख्यान चल रहा है। मैं कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, मेरे कुछ जैन दोस्त सिगरेट रावी मांस का सेवन करते हैं और वह कभी कभी भगवान का भी अभिषेक करते हैं, क्या अभिषेक करने से पुण्य मिले? नहीं, बहुत पाप का बल होता है। जो व्यक्ति विदेन भगवान का अभिषेक करता है, स्पर्श करता है, और यदि दारू और मांस आदि का सेवन करता है, ऐसा व्यक्ति जिनेन भगवान को और सदूस बनाता हुआ घोर पाप का बंद करता है। यदि आपने कोई ऐसे बच्चों को देखा है तो उनको या तो हमारे पास ले आए, हम उनको समझा लेते हैं, इस बुराई को छोड़ दें, इसके बाद अभिषेक पूजन करने में कोई दोष नहीं है, किंतु इस बुराई को अगर करते हैं तो अभिषेक पूजन करने से मिलने वाला पुण्य उनके लिए कोई कार्यकारी नहीं होगा। कितना जरूर है हम ऐसे कामों से बचें। मैं लोग गलत आदत कैसे छुड़वा दूं? गलत आदत छुड़ाने का सबसे अच्छा आपको उपाय बताते हैं, सुन रहे हैं आप लोग, सबसे अच्छा उपाय है सत्संगति की ओर उनको ले आओ। अगर आप हमारे पास आते हैं तो धीरे से इनडायरेक्ट अगर आप हमें बता देंगे तो कई बार क्या होता है, वो व्यक्ति आपकी नहीं मानेगा किंतु गुरु महाराज की वो मान लेता है। तो जब कभी ऐसे सम्मेलन हो, विद्यार्थी सम्मेलन, अथवा जब कभी हम बैठे हों, एक दो बार उनको दर्शन करने ले आएंगे तो शायद उनके जीवन में परिवर्तन होगा। एक आचार्य पाय सागर महाराज हुए, वो पाय सागर महाराज जी सबके दर्शन में सम्मेल ली थे। एक बार उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज जी के दर्शन किए, तब से उनके परिणामों में ऐसा अंतर आया वो आगे जाते आचार्य पाय सागर मुनि होंगे। जो मुनि की निंदा करते उनका क्या होता है, जो मुनिराज की निंदा करते हैं आगम में लिखा है उनको कुष्ठ रोग आदि हो जाते हैं। इसलिए ये पीछे वाले भैया जल्दी करके आ जाओ, काम इमरजेंसी कुछ हो तो आओ बैठ जाओ, मेरे सुख से आप करो है एक काम दो साल। जो मुनि की निंदा करता है उसका क्या होता है आपको बता दिया। जो दूसरों की निंदा करता है वैसे अवगुण उनके भीतर भी आ जाते हैं। कुछ लोगों को तो क्या ज्ञान तो होता नहीं है, लेकिन बस उनको मुनि निंदा करना ही उनका लक्ष्य होता है। ऐसे लोगों को अगले जन्म में या इसी जन्म में कुष्ठ आदि रोग हो जाते हैं। एक बार का प्रसंग आता है, एक रानी अपने दर्पण में श्रृंगार कर रही थी, उसी समय पीछे से मुनिराज निकले और मुनिराज को देख के उसने मुख सुकोड़ा, तुरंत थूक दिया, उस थूकने से उसका ऐसा पाप का बंद हुआ, उसी जन्म उसको कोढ़ हो गया और उस कोढ़ में तड़प तड़प के मर करके वो कुतिया या गदेश अनेक पर्यायों में गई। और जब स्त्री पर्याय में लड़की बनी उसका शरीर इतनी दुर्गंध आती थी कि उसको गांव के बाहर लोग रख दे दिया, क्योंकि वहां पर रहने से पूरे गांव में दुर्गंध फैलती थी। दुर्गंधा नाम की एक बेटी की कथा आती है, उसमें मुनि निंदा का ये परिणाम है ऐसा बताते हैं। अगर हम नियम लेते हैं और अगर उस नियम का पालन नहीं पालते हैं तो हम उस नियम कैसे पालन करें? यदि आपने कोई नियम लिया है तो आपको दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए, और यदि कोई परिस्थिति हो तो मुनि महाराज आदि को बता करके उसको संशोधन कर ले, किंतु नियम को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। लड़कियों को कैर केयर क्या होता है, कैर केयर कैर केयर क्यों नहीं बनाना चाहिए? केयर केयर मैंने क्या होता लड़कियों को केयर केयर पेट क्या लिखा है, कैर पेट कुछ होता क्या होता कैर पेट है, बालों को कह देगा दस है। लड़कियों को केयर पैट क्यों नहीं बनाना चाहिए पता नहीं क्या है। चलिए मतलब क्या होता है, सुनो है हाँ, ब्यूटी पार्लर संबंधित कुछ भी होगा तो पहली बात तो है आज सुनो, ब्यूटी पार्लर में जाके या ज्यादा क्रीम को आजकल लड़कियों के भी लड़कों के भी पार्लर आ गए, मेंस पार्लर तो लिखे रहते ना, अब ये भी नए नए तरीके से लड़कियां भोले बनाए तो फिर भी ठीक है, तुम भी भोले बनाने लग जाओ थोड़े कल भी बताए ये बता रहे ये भी आज का नहीं। देखो पहली बात तो है कि आज श्रृंगार सामग्री आदि जितनी भी आ रही ना उसमें आप अपनी अनुकूलता देख लो, मर्यादा देख लो और उसका प्रयोग उतना ही करेंगे जिससे कि हमारा जीवन आई तो और मम्मी पापा के पैसे कभी व्यर्थ न हो। अभी हमने बताया देखा एक एक हजार बता रहे 800-800 रुपए की लिपस्टिक आती है, हाँ दो आईब्रो हो क्या काजल लगाने की पेंसिल 500-700 रुपए लिए, हम तो आज तक सचिव रह गए। बताते महाराज और हजार हजार रुपए क्रीम आती है लेकिन ऐसे शरीर सौंदर्य प्रसाधन आदि जिनसे हमारा अहित भी हो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अपने YouTube वगैरह में बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक उपाय आते हैं, हल्दी है, ये दही है, दूध है, जिनके प्रयोग करने से शरीर की निर्मलता भी होती है और इसके साथ पाप से भी बचते हैं और पैसा भी हमारा बचता है। ब्यूटी पार्लर आदि में जाना नहीं चाहिए। ज्यादा पहले भी ऐसा होता था घर में सब साधन होते थे किंतु आजकल एक फैशन बन गया है। विद्यासागर महाराज सबसे बड़े मुनि क्यों मानते हैं, क्या हम एक जैसा मुनि नहीं होते हैं? ऐसा है विद्यासागर महाराज जी को सबसे बड़े आज श्रेष्ठ संत क्यों मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी साधना की और निष्परिग्रह के साथ जो आज निर्दोष मुनि महाराज की चर्या का पालन कर रहे हैं इसमें कोई दो मत संदेह नहीं है कि वर्तमान में जितने भी आचार्य और मुनि हैं उस सब में आचार्य विद्यासागर जी से चर्या पालन करने वाला कोई दूसरा संत आज है ही नहीं। आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने भी कहा था कि अगर चतुर्थ काल के कोई साधु देखना हो तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी को देखो। आचार्य इतने बड़े संत के नायक होते उनके पास कोई तिलतु समात परिग्रह नहीं, क्या भोजन में लेते कभी देखा आपने? काजू नहीं, किशमिश नहीं, फल नहीं, रस नहीं, सब्जी नहीं, दाल और रोटी के माध्यम से 70 साल की उम्र में अपनी चर्या चला रहे हैं। आज मात्र चर्या की बात नहीं, आज आप दिनों में उनके दर्शन कर लेंगे, दूसरे साधु जो कहते हैं उनके चरणों की धूल भी नहीं। मुनि मुनि बराबर होना अलग बात है कि चर्या के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आज जैसे गुरुवर की चर्या है वैसी चर्या और किसी साधु की आज देखने में नहीं आती। इसलिए गुरु महाराज को कहते हैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना है आत्मविश्वास। किसी कार्य के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है जब किसी काम को हम करने जाएं तो ये ना सोचे कि मैं ही सब कुछ करूंगा। और इसे हमने बताया हम कोई भी काम करते हैं हम कहते गुरु जी का आशीर्वाद है हमारे लिए तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कल हमने बताया था खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, अपने आप को गधा मानो और गुरु को महान मानो। गुरु की कृपा हमारे ऊपर है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप काम अच्छे से कर सकेंगे। इसलिए गुरु महाराज का जिसने अपने जीवन में गुरु बना लिया घबराना नहीं, गुरु और प्रभु हमेशा आपकी सहायता करते हैं। एक दृष्टांत बन एक बार किसी ने कहा कि भगवान तुम मेरा हमेशा साथ रहोगे, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ना। बोले बेटा घबरा नहीं, मैं तेरे साथ उस कल तुझे चलना है। उदाहरण था और घने जंगल में वो घने जंगल में जो था वो व्यक्ति अपने बच्चे को वो भगवान को लेकर के चलने लगा तो भगवान के दो पैर और उस बच्चे के दो पैर ऐसे चारों पैर घने जंगल में जा रहे थे। अचानक शेर आ गया, उसी रात वो व्यक्ति घबराने लगा, पसीना पसीना हो गया और दौड़ लगाने लगा और जैसे दौड़ते दौड़ते उसने देखा तो चार पैर की जगह दो ही पैर बचे थे, भगवान तो गायब हो गए। अरे अब वो दौड़ते दौड़ते जैसे जब शेर भाग चला गया तब वो मंजिल पे पहुंचा तो फिर चार पैर दिखने लगे। वो कहने लगा यार भगवान आप भी गजब करते हो, जब शेर आया तो आप भग गया और अब शेर चला गया तो आ गए, आपने तो कहा कष्ट में मैं आपकी मदद करूंगा। बोले बेटा भूल में मत रहे, उस समय जो तुझे दो पैर दिख रहे थे ना वो तो मेरे ही पैर थे, तेरे पैर से मैंने भूल ही ले लिया था। बात ऐसी है गुरु और प्रभु का हमारी सहायता करते हमें पता नहीं लगता, लेकिन यदि तुम्हें आत्मविश्वास और निर्भय बनना है तो गुरु के ऊपर अपना जीवन छोड़ दो कि हम अच्छा से अच्छा करेंगे फिर गुरु महाराज सदा हमारी सहायता करेंगे। इस प्रकार से आपका प्रसन्न जी प्रवचन में जो कुछ बातें कहने की आपको शंका समाधान के माध्यम से करें बोलिए भगवान महाराज स्वामी जी। चलिए खड़े हो जाओ जब तक महाराज जी आते तब तक एक पढ़ लें इसमें। आ रहे हुए महाराज जी।
परमेधि सात नंबर परमेधि गंबर मुनि वरे देखे हृदय अर्चित होता है
दर्शनीय बोले महावीर भगवान की।